એમાં 88 પાના ઉપર આપણે આવ્યા છીએ. એ દૂસરે શ્લોક મેં મુખ્યતા દો શબ્દ કોણ છે, મુખ્ય કોણ દો શબ્દ છે, અનંતર્મણી તત્વ, ઓર દૂસરા કોણ સા શબ્દ હૈ, અનેકાંતમય મૂર્તિ, દો શબ્દ હૈ, અનંત ધર્મણી તત્વ. કોઈ ભી તત્વ હોતા હૈ વો કૈસા હોતા હૈ, એક ધર્મ વાળા યા એક સે જ્યાદા, અનેક અનંત ધર્મ વાળા, કૈસા આપકો પતા હૈ કે એક હી પદાર્થ હૈ વો અનંત ધર્મ, ઉસમે અવશ્યમ ભાવી હોના હી ચાહિયે, એસા ક્યો? ક્યોંકિ અનંત પદાર્થ કે બીચ મેં એક સ્વતંત્ર સ્વાધીન રૂપ સે મેરા અસ્તિત્વ હૈ, ઉસકા અર્થ ક્યા હુઆ? અનંત પર પદાર્થો કા મેરે મેં અભાવ રૂપ નાસ્તિરૂપ ધર્મ હૈ, મેરે તો અસ્તિરૂપ હૈ લેકિન અનંત પદાર્થ કે બીચ મેં ઉનસેસ મેં અલિપ્ત રૂપ સે અભાવ રૂપ સે મેં એ સ્વાધીન રૂપ સે તત્વ હો, તો અનંત પદાર્થો કે નાસ્તિરૂપ ધર્મ તો મેરે મેં હૈ, તો એસે અનંત ધર્મરૂપ જો તત્વ હૈ ઉસકો ક્યા કહેતે, જો જાને યા કહે ઉસકા નામ ક્યા કહેતે, અનેકાંતમય મૂર્તિ. તો વો અનેકાંતમય મૂર્તિ મેં તીન પ્રકાર લ્યા, જ્ઞાન મેં કેવળ જ્ઞાનમય ઓર ભાવસ્વરૂપ જ્ઞાનમય ઓર કેને રૂપ વાણી મેં સરસ્વતી માને જો ઉસમે જો કથન વાણી રૂપ હૈ ઉસકો, તો એ એક જ્ઞાન દેવી હૈ ઇસમેં ઓર એક કૈસે વાણી દેવી વચન દેવી, તો અહીંયા ઇસકા ચર્ચા ચાલ રહી હૈ. ઇસમેં દેખો 88 પેજ મેં સર્વપ્રથમ તીન દિયે હૈ, કેવલી પૂરે આત્મ તત્વ કો પ્રત્યક્ષ જાનતા હૈ ઓર શુદ્ધ જ્ઞાની વહી પૂરા આત્મ તત્વ કો પરોક્ષ જાનતા હૈ. ફર્ક ક્યા હૈ? પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ દોનો કે વિષય મેં કોઈ ફર્ક નહીં, કિસી કો લાગે ફર્ક તો હૈ કે નહીં? કેવલી તન કાલ તીન લોક કો જાનતે ઓર શુદ્ધ કેવલી કિતના જાનતે હૈ, જીતના ક્ષોભ સમય ઇતના જાનતે હૈ ને, લોકાલોક કો તો નહીં જાનતે હૈ ને, ક્યાં કૈસે? અરે ઉનકા ક્ષોભ સમય ઇતના હી જાનેંગે ને વો તો, ક્યા ઇતને મેં કૈસે આતા? તો ભી દોનો કે યે અપૂર્ણ હૈ ઓર કેવળ જ્ઞાન પૂરા હૈ, એસે કહાં સે? અરે દેખિયે ઉસમેં એક બહોત અચ્છા ગુરુદેવ ન્યાય લેતે હૈ, ઉનકા છ દ્રવ્ય કી ઉનકો શ્રદ્ધા હૈ કે નહીં, નવ તત્વ કી શ્રદ્ધા હૈ કે નહીં, તો જગત મેં છ દ્રવ્ય કે અલાવા દૂસરા ક્યા હૈ? નવ તત્વ સાત તત્વ કે અલાવા ઓર ક્યા હૈ? હા, જૈસે કેવલી વિશેષ રૂપ સે પ્રત્યક્ષ માને વિશેષ રૂપ સે એ જાને, એસા કોઈ નહીં જાનતે, સામાન્ય રૂપ સે એ સબકો તો જાનતે, પરોક્ષ રૂપ કો જાનતે, ક્યોંકિ છ દ્રવ્ય તો વિશ્વ કિસો કહેતે હૈ, છ દ્રવ્ય કા સમ હોતા, છ દ્રવ્ય કી શ્રદ્ધા તો હૈ ઉનકો ખ્યાલ મેં કોઈ, તો એ એસે હી. ઓર દૂસરા તીસરા વાણી પૂરે આત્મ તત્વ કો કહેતી હૈ બસ, એટલે તીનો કો ક્યા કહેતે હૈ? અનેકાંતમય મૂર્તિ. અને ક્યો અનેકાંતમય મૂર્તિ હૈ? ક્યોંકિ અનંત ધર્મરૂપ તત્વ કો વો જાને ઓર કહેતી હૈ, એટલે દોનો કા રિલેશન હૈ. અનંત ધર્મ સ્વરૂપ પદાર્થ હૈ ઓર પદાર્થ કો જાને યા કે હૈ ઉસકા નામ અનેકાંતમય મૂર્તિ કહેને મેં આતા હૈ. ઇસમે વો દૂસરા પેરેગ્રાફ મેં આખિર કી લાઈન હૈ, ઇસમેં અકે સભી ગુણો મેં અનંત તાકાત હૈ, સભી ગુણો મેં સામર્થ. દેખે દો પ્રકાર હૈ, ક્યાં દો પ્રકાર હૈ? સંખ્યા કી રૂપ સે ભી અનંત હૈ ઓર એક એક ગુણ કા સામર્થ ભી અનંત હૈ. ક્ષેત્ર કિતના હૈ? અસંખ્ય પ્રદેશ. અસંખ્ય પ્રદેશ મેં અનંત સામર્થ વાળા પદાર્થ રહે સકતા? રહે સકતા? ક્ષેત્ર તો ખોટ થોડા સા હૈ, અસંખ્ય પ્રદેશ થોડા સા હૈ ઓર અનંત જાને એસે અનંત સામર્થ હોય છે કેસે? અરે અસંખ નહીં, એક પ્રદેશ મેં ભી અનંત સામર્થ વાળા રહી શકે. પરમાણુ એક પ્રદેશ, એ કાલાણુ એક પ્રદેશ, એ ઓર કિતને ગુણ રહેતે હૈ? એક એક કા સામર્થ કિતના હૈ? દેખો ઉસકા ભી ગુરુદેવ સે ખુલાસા કરતે હૈ, ચાર ગુણ મેં લગા કે કરેંગે. એક સભી ગુણો મેં અનંત તાકાત હૈ, સામર્થ હૈ, શક્તિ હૈ. ઇસમાં પહેલે જ્ઞાન મેં કૌન સી શક્તિ હૈ? જ્ઞાન મેં કિસકી શક્તિ હૈ? જાનને કી. કિસકો જાને? જ્ઞાન મેં ક્યા સામર્થ્ય? જાનને કે જ્ઞેયત્વ હૈ યા જ્ઞાનત્વ હૈ? જ્ઞાન મેં ક્યા હૈ? જ્ઞાનત્વ હૈ યા જ્ઞેયત્વ હૈ?
જ્ઞાન.
ज्ञान में क्या है, नानक से
दोनों
दोनों है। ज्ञान अपने से ज्ञान रूप तो है, लेकिन दूसरे के ज्ञान में ज्ञेय बने, ऐसा भी उनका है ना। कोई भी ज्ञेय तो सभी में है, द्रव गुण पर ऐसा भी नहीं। इसलिए एक शक्ति कौन सी, परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति पंद्रहवीं है ना। सामान्य रूप से हम क्या लेते हैं, मैं कैसा हूँ, ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञेय नहीं हूँ, ये तो हम तो याद तो नहीं करते। हम क्या लेते हैं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञेय नहीं चलता सही, मैं ज्ञेय तत्व हूँ, सही या गलत है, हाँ तो हम तो कभी याद नहीं करते। इसलिए याद नहीं करते क्योंकि ज्ञेयत्व में सभी आ जाता है। ये तो सबसे भेद करना है तो असाधारण गुण लिया जाता है कभी भी कोई भी पदार्थ को। जैसे शक्कर को कहना है तो क्या कहेंगे, सफर होगी वो सफेद होगी वो नहीं होती, शक्कर निरंतर कैसी होती है, सफेद होती है कि नहीं होती है कि नहीं होती है, तो फिर हम क्या गलत कहते हैं। अरे भाई सफेद उसका एक असाधारण नहीं है, वो दूसरे में भी है, तो उसका एक असाधारण क्या है, मीठापना, नींबू खट्टापना, तो सबका एक असाधारण लेने जाता है। तो यहाँ तो ऐसे कि तीन काल तीन लोक को जानने की अनंत ताकत किसमें है, ज्ञान में है। मेरी वो भी ज्ञान में माने गुण में शक्ति रूप है और केवल ज्ञान की पर्याय में व्यक्त है, एक समय की पर्याय। इसमें एक सामने सामने कंपेयर करें, एक द्रव्य है लेकिन जाने अनंत द्रव्य को, एक द्रव्य की पर्याय ने है असंख्य प्रदेश में, जाने अनंत प्रदेश को, वो एक समय की पर्याय है और जाने तीन काल को, और ये एक ही गुण का भाव है लेकिन अनंत गुण के भाव को। अपना एकत्वपना और भी अनेकत्व जानता है, ऐसा तीन काल जानने की अनंत ताकत जिसमें है ऐसे ज्ञान में है। फिर दूसरा इसी प्रकार अनंत ताकत दर्शन में कैसे है, देखने या दर्शन माने अवलोकन लेना, श्रद्धा में भी ले सकते हैं, श्रद्धा में प्रतीत करना है या दर्शन में अवलोकन। हालांकि ये दर्शन भेद न करे कि ये अनंत है, द्रव्य है या क्षेत्र है, ऐसा नहीं, लेकिन एक सामान्य रूप से अभेद रूप से भेद के बिना जिसको अवलोकन करने ताकत किसमें है, ऐसे करके गुरुदेव से चार गुण में लेते। ऐसे अनंत गुणों में क्या है, अनंत सामर्थ्यता है, गुणों की संख्या तो अनंत है लेकिन एक एक गुण, लेकिन वही आगे आया और फिर भी आएगा, विश्वास नहीं बैठता है। एक सामान्य अपना मन में शू बेसी गये से सारू एटलू बार मन खराब जाने मारा मन है, इसे इसे विपरीत जो भी अच्छा है वो सब मेरे में है और पर में है, वो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन हमें पर में ही सब कुछ क्या लगता है, अच्छा लगता है। एक सरस व्याख्या प्रवचन सार महावे से सिद्ध भगवान कैसे कहते हैं, प्रवचन सार में तो चाली गये ना पहले, हमारा हतु हवे हमारा नियम सारा है, इसमें सिद्ध भगवान के लिए क्या कर लिया, जो इष्ट है वो सब प्राप्त हुआ और जो अनिष्ट है वो सब नाश हुआ। सिद्ध भगवान कैसे कहते हैं, जो इष्ट है अजी अरियन दशा में तो औदयिक ईर्या पथाश्रय है, औदयिक भाव है, असिद्धत्व भाव है, चार प्रतिजीवी गुण नहीं हुए, लेकिन यहाँ सिद्ध भगवान ने जो भी इष्ट है सुंदर है जो प्रकट करने योग्य है सब प्राप्त हो गया, और जो है छोड़ने योग्य त्यागने योग्य वो सब किसका अभाव हुआ। ऐसे यहाँ एक एक गुण में इतनी ऐसे ही अनंत ताकत वीर्य, वीर्य माने क्या, स्वरूप रचना वीर्य करे तो फिर क्रमबद्ध का काम क्या है, तो पर्याय तो अपने काल में होते हैं ना, इसमें वीर्य का क्या काम है, पुरुषार्थ का क्या काम है,
वही स्वीकार वही पुरुषार्थ है, दूसरा कौन सा पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है
जो ऐसे अपने स्वकाल में होना उसका नाम ही पुरुषार्थ है।
स्वकाल में होती
है सब, स्वकाल में पर्याय का होना उसका नाम पुरुषार्थ है,
ऐसा मानना उसका नाम पुरुषार्थ है,
कारण है देखा
और मानना उसका मानना।
देखो हम दोनों में कंफ्यूज कभी मत होना, क्रमबद्ध काल को सूचित करता है और पुरुषार्थ रचना के सामर्थ्य को सूचित करता है, कभी होना क्या होना किससे होना ये दो अलग है, कभी होना स्वकाल में क्या होना जैसा पुरुषार्थ, और जो हुआ सो भवितव्य है, तो इसे ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ हम सामान्य रूप से क्या मानते हैं, माने आगे पीछे करे, उसका नाम तो उसका नाम पुरुषार्थी नहीं है, ऐसा अभिप्राय वो कर्ता बुद्धि है। स्वयं सकाल में प्रकट होती है पुरुषार्थ से, वो उस परिणति की रचना होती है। जैसे शेड्यूल बनाते हैं कि नहीं, किसी कोई भी काम होता है ना, ऐसे मकान बनाते हैं तो क्या आर्किटेक्ट बनाते हैं ना कि भाई ये इतने दिन के बाद फर्स्ट स्लैब नाक डालना, दूसरा डालना है, कोई भी काम में तो जो एक टाइम वाइज टाइम लाइन है वो क्या है, क्रमबद्ध है। और जो रचना होना उसका नाम क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से रचना है और जो काल है वो स्वकाल है, क्रमबद्ध है। तो यहाँ वीर्य की रचना 47 शक्ति में है ना, 46 शक्ति में वीर्य शक्ति की क्या रचना है, स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रचना रचना। जैसे समोषण की रचना कौन करता है, कुबेर करता है ना, नहीं वो तो ये देखिए ये तो है ही, लेकिन कुबेर करता है ना, निमित्त है। चलो कुबेर के निमित्त से समोषण की रचना होती है, बस होता सही है। अरे वो कुबेर करता है लेकिन पुण्य किसका है, तीर्थंकर का है। इसमें बड़प्पन कुबेर का नहीं है, आते ना जो उसे कड़ी आए तो मकान बनाए, पर पैसा को ना से बनाते ना, वो बनाता है तो, लेकिन पैसा किसका होता है, उसकी महत्ता है। ये तीर्थंकर का समर्थ है, अपनी ताकत वीर्य एक समय एक विचार करे कितना पर्याय की रचना का क्या ताकत सामर्थ्य क्या है।
एक समय
हर एक द्रव्य में अपनी पर्यायों की रचना करने का पुरुषार्थ है वीर्य। यह तो अपने आत्मा के हित के लिए है, बाकी हर एक पदार्थ में पर्याय की रचना होती है। तो उस पर्याय की रचना का जो बल है वो सभी में है, सभी में वीर्य है। एक समय में परमाणु में अनंत कालास की पर्याय रंग की हो, दूसरे समय में सफेदाई की हो, एक समय में एक प्रदेश जाए और दूसरे समय में चौदह राज्य, एक क्या है, किसका कारण है, उनका सामर्थ्य है सबका। तो अपने यहाँ वीर्य अनंत आश्चर्य हिमात जो बधा जोशो ने तो छह कारक बधा लागू पड़े थे, पची भाव अभाव वर्तमान पर्याय हो तो ये बधा में थोड़ी लागू तो पड़े छे। आ तो मुख्यतः अपना लईने वात चाले छे, એટલે બધામાં એવું હોય છે બધા। તો અહીંયા એ વહી મેં ફિર સે સ્વભાવ ઓર સ્વભાવ કા સામર્થ, હમે વિશ્વાસ કિસકા નહીં હૈ, સ્વભાવ ક્યા હૈ ઓર સ્વભાવ કા સામર્થ ક્યા હૈ, ઓ દોનો કા વિશ્વાસ હમે બાર મેં જૈસે હોતા હૈ ને ભઈ ઇતના યે પૈસા વાલા હૈ તો ઉસકો 2-4 લાખ દેના તો કુછ નહીં હૈ, એસે તો ઉસકા કિતના હોગા, એસે યે આત્મા મેં સામર્થ કિતના હૈ, हम कल्पना से परे है उसके, कल्पना भी नहीं कर पाए इतना सामर्थ्य भरा, फिर भी ये बाह्य पदार्थों में भीख मांगते कुछ अच्छा है कैसे यहाँ से मिल जाए। और आखिर में इतनी अनंत ताकत चारित्र में किसकी है, स्थिरता है, ज्ञान में जानने की है, दर्शन में अवलोकन में है, वीर्य में रचना की है, और चारित्र में स्थिर होने की ताकत कितनी है, चारित्र की स्थिरता की लीनता की एकाग्रता की सामर्थ्य कितना है। एक बार यथा क्या चारित्र हुआ तो शादी अनंत काल, और फिर
वो तो अपने प्रदेश को मतलब
अरे ऐसी वो तो पूर्णता की प्राप्ति, मुनिराज की कैसी स्थिरता होती है कि बाय में शेर आदि आ जाए तो भी उसको क्या करे, विचलित न कर पाए, प्रणति तो नहीं उपयोग भी विचलित न जाए, ऐसी तो अभी ये एक गुणस्थान में छठे सातवें में इतनी स्थिरता है। तो फिर यथाख्यात और केवली सिद्ध भगवान की बात तो कोई, लेकिन ये हम गुरुदेव जी के प्रवचन में दो बात बहुत सीखने योग्य, कौन सी ऐसे तो सभी है, कौन सी, स्वभाव और स्वभाव का सामर्थ्य। एक बार अपने को विश्वास आ जाए कि स्वभाव क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, तो क्या होता है, बाह्य में भी होता है ना कि सामर्थ्य होता है, जे रीते बार में जो कहीं चिपकावा माटे नु शू जो आपणे બ્લ્યુ જોવે ને પેલા ફેવિકોલ હતો તો આપણને કે ફેવિકોલ આમ લગાડ્યું કે હવે નહીં છૂટું પડે, એની શું છે એની તાકાત આપણને એક દેખાડે છે. એસે હી યહાં અપને ચારિત્ર ગુણ મેં ભી સ્થિરતા લિનકા કા એસા સામર્થ્ય એસે અનંત શક્તિ ઓર ઉનકી પર્યાય કો ધરને વાલા કેસા હે આત્મા. ચલો ઇનકે પીછે પેરેગ્રાફ યા છે. નિજ ઘર કી બાત બડી હૈ, નિજ ઘર કોણ સા ઘર હૈ, અપના અસંખ્ય પ્રદેશ કી બાત એસી હૈ, નિજ ઘર કી કિતની કિંમત હૈ, ઇસમે કિતની મૂડી હૈ, ઉસને કભી ભી દેખી હી નહીં હૈ. નિજ ઘર મે એ ઘર કિસને બનાયા, ઘર તો બનાયા હોગા ને કિસને, તો નહીં અનાદિ સામ એ અનાદિ તત્વ મે કભી ભી બનાને કી કોઈ આવશ્યકતા હી નહીં હૈ. તો એસે નિજ કિતની કિંમત હૈ, કિતના સામર્થ્ય ભરા હૈ, જૈસા કે ના કિતની કેપિટલ મૂડી ઇસમે હૈ, વો કિસને કભી હમને દેખી નહીં. તો એસે તત્વ કો કોણ દેખતે હૈ, કેવલી દેખતે હૈ, શ્રુજ્ઞાની ને દેખા હૈ ઓર વાણી ને કહા હૈ. કેવલી ને એસે તત્વ કો દેખા હૈ, શ્રુજ્ઞાની ને દેખા હૈ ઓર વાણી ને એસા તત્વ કો કહા હૈ. તો ઇસ પ્રકાર એ તીનો કો દેખો આગે ક્યુ હૈ 89 પેજ પે 1000 માં છે. શબ્દ પ્રયોગ અલગ ક્યો હૈ, બાકી જાનના દેખના માને અવલોકન તો હૈ નહીં, શ્રદ્ધા લેના તો શ્રદ્ધા લે લો, દેખ સભી સાથ મેં હૈ. તો અહીંયા તીનો કો એક સમાન માન, તીનો કા વિષય એક હૈ, એક ને પ્રત્યક્ષ દેખા, એક ને પરોક્ષ દેખા ઓર એક ને કહા, બસ બાકી વિષય તો શબ્દ. તો કેવલી ઓર શુદ્ધ કેવલી જૈસે આત્મા કો દેખતે એસે હી વાચ્ય આત્મા કો વાણી કહેતે હૈ. દેખો ઇસે ફરક ક્યા હુઆ, ફરક માને ક્યા હૈ, કેવળી શ્રુત કેવળી સફર કો જાનતે હૈ ઓર વાણી સફર કો કહેતી હૈ. દોનો મેં એક વિષય, એક જાનના હૈ એક કહેના હૈ. સફર વાણી મેં તો તાકાત, જાનને કી તાકાત નહીં હૈ ને, વો કૈસે વર્ણન કર સકતી હૈ. નહીં નહીં, હમ કિસી કો દેખે તો ઉસકી હમ પહેચાન કર સકતે હૈ ને, યદિ હમને કિસી કો દેખા હી નહીં તો ઉસકા વર્ણન નહીં કર સકતે ને. કહાં સે, વો તો જડ હૈ, અજીવ હૈ, ઉસકો કુછ પતા હી નહીં હૈ. હા તો હા, પણ હમ કહેંગે કભી, જાનેંગે તો હી કહેંગે ને, એસા હી ને, બિના જાને કૈસે કહા. કે કોઈ આપ કોઈ વ્યક્તિ કા પરિચય માંગે, બોલે મેને કભી દેખા હી નહીં, મેં કૈસે કહું. શબ્દો કી રચના, લેકિન વો જાને તભી તો કુછ કહે સકે ને, બિના જાને કૈસે.
ઓર બાદ મેં ઉસમે નિમિત્ત જાનને વાલા હી હોગા, વો એક નિશ્ચિત હૈ કે ઉસને જિસને જાના વો હી કહેગા, ઉસકે નિમિત્ત સે હી કહા જાયે.
નહીં નહીં, ફિર ભી પહેલા જાનના તો જરૂરી હૈ કે નહીં?
નહીં વાહ, એસા નહીં,
જાણ્યા વગર કહી શકાય?
વાણી મેં એસા નહીં
હા, કેમ ભાઈ, એને વળી એનું સ્પેશિયલ શું કામ, એનું સ્પેશિયલ શું કામ? દેખો પૂતગલ જાડ હૈ, માને જ્ઞાન આવરણી કર્મ કો પતા નહીં, ઇસ ભાઈ ને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કિયા કે નહીં કિયા, તો ઉસકો કૈસે પતા લગેગા? ઉસકો કેવળ જ્ઞાન હો જાય, જ્ઞાન આવરણી કર્મ કા ઉદય રહી જાય, ક્યા કરે? ઉસકો પતા તો નહીં હૈ ને, પૂતગલ હૈ ને, જડ અજીવ અચેતન
તો હૈ ના, પતા નહીં હૈ પરિણામ નહીં ઇનકા.
હમ કભી ભી નિમિત નૈમિતિક સંબંધ હૈ, ઉસમે કોઈ જાનને કી જરૂરત નહીં, સહજ એસા યોગ બન જાતા હૈ. ઇસમે જડ હો તો ક્યા હૈ, લેકિન નિમિત નૈમિતિક સંબંધ હૈ ઇસમે. ભાઈ મેં કૈસે સહજતા મેં હોતા હૈ, પાન કર ઋતુ આતી હૈ તો ક્યો પત્તે ગિર જાતે હૈ, શીત ઓર એ સબકી અપની અપની હૈ કે નહીં, સબ કુદરત કી રચના મેં. હમ ફિર સે સહજતા કો સ્વીકારી નહીં પાતે. કોઈ કરતા માનો તો યસ કર દેંગે, દૂસરે કો ભી કરતા માનો ઓર અપને કો માનના. જગત મેં સ્વયં રચિત પદાર્થ કા સ્વયં પ્રણવન હો રહા હૈ. તો એસે જૈસે કેવલી ને જાના, શ્રુત કેવલી ને જાના, એસે હી વાણી મેં સ્વપર કહેને કી તાકાત હૈ. ઓર વો ભી ખાસ કિસ મેં, પૂતગલ લેવે ઇસમે ભી ખાસ કોણ, ભાષા વર્ણા. ભાષા વર્ણા કે સ્કંદ કે જો હૈ ઉસકા પ્રણવન હોગા, અકેલે એક પરમાણુ મેં, પરમાણુ મેં તો નહીં, ઓર ભી જો વર્ણા હોતી ઉસમે ભી નહીં હોગા, એક ઉસકા ભાષા વર્ણામાં એસે હોતા હૈ. તો ઇસ પ્રકાર ફિર સે ગુરુદેવ સે લેતે, શ્રુત જ્ઞાન ભી અનેકાનમય સરસ્વતી કી મૂર્તિ હૈ, કેવલ જ્ઞાન ભી સરસ્વતી કી મૂર્તિ ઓર વાણી ભી અનેકાનમય સરસ્વતી કી મૂર્તિ. ક્યો ક્યો क्योंकि पूरे तत्व को, जो अनंत धर्म को बैठा हुआ जो तत्व है उसको वो बताते हैं, ज्ञान जानता है और वाणी बताता है। पूरे अनंत धर्म रूप जो तत्व है उसको वो वाणी कहती है, ज्ञान उनको जानते, तो वो ज्ञान को ही, वाणी को ही अनेकान में कहते। के जाने किसको? अनंत धर्म को पी के बैठा ऐसा तत्व को, पदार्थ को, अनंत धर्मात्मा। लेकिन यहाँ उनको जाने और कहे तो वाणी को भी अनेकानमय कहने में आता है। और एक भी और भी अच्छा है, दोनों के बीच में क्या फर्क है ज्ञान और वाणी में? देखो उसमें है, लास्ट पैराग्राफ में है ना, श्रोता बात पूज्य गुरुदेव सी कहते, उसकी लास्ट लाइन, उपादान रूप से शुद्ध मूर्ति वो ज्ञान है और निमित्त रूप से मूर्ति उसका नाम वाणी है। क्या है उपादान रूप? कौन है? वस्तु के अनंत धर्मों को जानने वाला कौन है? ज्ञान है। तो ये ज्ञान क्या है? उपादान रूप। और वो अनंत धर्मात्मक पदार्थ तो कहने वाली कौन सी है? वाणी। तो वो निमित्त रूप से है। दो तीनों में दो डिवीजन किया, जो ज्ञान में है वो उपादान अपना है और जो वाणी है वो पुद्गल का, तो वो निमित्त रूप से है। तो ऐसे दोनों में भी इस प्रकार किया कि उपादान रूप से ज्ञान है और निमित्त रूप से मूर्ति है। आगे सर्व पदार्थ को तत्व, तत्व माने क्या कहते हैं? तत्व माने क्या? उनका जो भाव माने उनका स्वरूप, उसपना, तत्व, तत् उस और त्व माने पना, उसपना, आश्रव का आश्रवपना, जड़ का जड़पना, इसे आता है ना, इसलिए तत् तत्व अतत अतत तत् अतत ऐसे बोल आते हैं। तत् माने उस अने त्व माने रूप पना। तो ऐसे सभी तत्वों का अपना अपना रूप है, स्वरूप है उसको, तो ऐसे इनके स्वरूप को जानने तो कहते हैं। देखो फिर से आगे वही पेज नंबर में 90 में नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, वाग देवी। इसमें देखो नाम दिया गुरुदेव सिंह ने, एक पहला तो क्या दिया, एक उपादान रूप दिया और निमित्त उसका नाम देते। श्रुतनान और केवलनान कैसे? ज्ञान देवी है। और वाणी कैसी है? वचन देवी है। देवी है ना, वाक देवी, वाणी रूप, वचन रूप देवी। और एक कैसे? ज्ञान देवी, जानने रूप है। जैसे बार में आते हैं सरस्वती की मूर्ति माने पिकॉक पर बैठती है ना, ऐसा है ना, वीणा बजाती है। यहाँ के ये कौन सी देवी है? ज्ञान देवी, जानने वाले ज्ञान देवी है और कहने वाली वाक वाणी ये देवी है। और उसका नाम है नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। आता है जिना देश जाता जिनेन्द्रा भी कहता विशुद्ध, इसमें तो वागेश्वरी वाक वाक ग क वाक वाणी में भी ईश्वर रूप है, इसलिए इसका नाम दिव्यत्वनि कहते हैं, प्रमुख रूप है। तो ऐसी ज्ञान देवी है, उसका अर्थ गुरुदेव सी कहते हैं, बार में आता है ना उसका ज्ञान 91 पेज पे देखे, उसका दूसरा पैराग्राफ, श्रोता वाघ ऊपर बैसे ऐसे पिको, कोई कोई वाघ ऊपर भी बना, तो उसका गुरुदेव सी इसमें थे ज्ञान देवी कैसे? मिथ्यात्व राग द्वेष के जेर को नाश करके, व्यय करके अमृत सार को, सागर को उछालने में वो प्रकट करते। कैसे ज्ञान देवी कैसे? अस्थि नास्ति बताया, उत्पाद व्यय, व्यय किसका किया? राग द्वेष मिथ्यात्व का नाश करे ऐसी ज्ञान देवी है, जिसमें दोनों सम्यक दर्शन, ज्ञान श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों। और उससे क्या प्रकट होता है मिथ्यात्व का नाश किया? अमृत सागर को उछालने के प्रकट करते हैं, शक्ति रूप जो सामर्थ्य उसको वो प्रकट करते हैं। ऐसे ज्ञान सामर्थ्य का ये इसमें आगे, अरे उसे विश्वास में भरोसे में क्या आता है? फरी फरी गुरुदेव आप प्रवचन मात्र रिपीट करू एने का विश्वास गुरुदेव से भले भगवान आत्मा केटली वार पण क्यारे पण अंदर माती केवो विश्वास नो वात आवी छे के ना हूँ भगवान, उल्टा नो एम थाय हूँ मने भगवान मानीश तो शू थशे? अभिमान थई जशे एने पोताना स्वभाव नो स्वीकारवामां शू लागे छे ने? अभिमान थाय छे। ना अमारे तो पर्याय नी शू छे? नहीं, आपणे निराभिमान रहेवू छे। आपणे अरे स्वभाव का अभिमान नहीं है, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, ये स्वभाव का सम्मान है, स्वभाव का वो बहुमान है, ये अभिमान नहीं है। अभिमान किसे कहते हैं? जो न हो और मानना, या तो विपरीतता की अधिकता करना, न हो तो है ही, वो तो गलत भी है, झूठ भी है, लेकिन जिसकी कीमत न हो, जिसकी अधिकता नहीं, उसको अधिक करके कहना, वो क्या है? अभिमान है। संयोग का अभिमान होगा, स्वभाव का सम्मान होगा। जो अपने नहीं है इसे संयोग में अधिकता करना, वो क्या है? अभिमान है। तो यहाँ अरे विश्वास में भरोस में क्या कैसा आता है? और इसमें और हम क्या कल्पना करते हैं? हमें धर्म करना है, लेकिन वो कोई दूसरा करा देगा। धर्म है वो कहीं दूसरे से आएगा, और उसका साधन भी कहीं दूसरे होगा। सही माने धर्म के छह कारक किसमें है? मेरे में कभी है, सर्वथा है, वो तो मेरी शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन मैं उसको पहचानता नहीं, स्वीकारता नहीं। कहाँ से आए इतना समझ लेना क्या सिद्धांत है? पूरा कर्ता कर्म अधिकार किसमें, किसके लिए लिखा? कर्ता कर्मपना एक ही जाति का होता है, कर्ता कर्मपना एक ही पदार्थ में होता है। कर्ता मैं बनूं और पर में मेरा कुछ कार्य हो, या पर कर्ता बने और मुझ में कार्य हो, ऐसा नहीं। पहला तो ये सिद्धांत, कर्ता कर्मपना कहाँ होता है? एक ही पदार्थ में होता है। और दूसरा, एक ही जात होना चाहिए, एक ही लक्षण। राग कर्ता बने और वितरागता कार्य हो, नहीं पंच महाव्रत पालन करेंगे तो क्या होगा? मुनि दशा आएगी ना? पंच महाव्रत से मुनि दशा नहीं, तो मुनिराज पंच महाव्रत नहीं पालते? पालते हैं ना, तभी तो मुनिराज है ना। पंच महाव्रत नहीं पाले तो मुनि नहीं हो सकते हैं ना। तो पंच महाव्रत है तो मुनि दशा आई कि नहीं? हाँ, तो ये निश्चित है ना, पंच महाव्रत ही होता है ना, किसे हीन नहीं होता है ना। अरे भाई वही, लेकिन वो दो के बीच में, दोनों का एक ही समय में अस्तित्व है, लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है, क्योंकि कर्ता कर्मपना एक ही जात का होता है। अब नींबू का बीज और वह कौन सा आम का पेड़ होगा? क्या कारण कार्य के साथ एक ही पदार्थ में और एक ही लक्षण स्वभाव में भाव में? तो राग करता हो और मेरे वितरागता कार्य, और वितरागता कर्ता बनो राग कार्य, ऐसा भी ये नहीं होता है। होते हैं कौन ना कौन का? मुनिराज अपने स्वभाव दृष्टि से उसका करता नहीं है, अपना कमजोरी है। उस परिणाम देखे दो प्रकार से है, क्या करता कैसे कहते? एक परिणामन की अपेक्षा और एक करने योग्य की अपेक्षा। क्या है कर्तापन में दो? एक परिणामन, मुनिराज मानते हैं कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है, तो परिणामन है, इसलिए मैं उसको कर्ता को, लेकिन करने योग्य की अपेक्षा से मैं व्रत आदि के परिणाम का कर्ता नहीं। ये दो प्रकार है, करने योग्य और अपूर्णता है, तो उस भूमिका में ऐसा विकल्प होता है। एक चारित्र की अपेक्षा से उसमें करने योग्य है, वो कर श्रद्धा की अपेक्षा से है। दोनों उसको मुनिराज जानते हैं कि इतना मेरी चारित्र के पुरुषार्थ की कमजोरी है कि मुझे संजलन का कसाय अभी खड़ा हो जाता है। फिर से वो भी हम नहीं मानते, 28 मुड़गुल के परिणाम वो क्या है? दोष है। मुनिराज ऐसे परिणाम को आप दोष बोलते, दोषित बोलते हो, कसाय बोलते हो? अरे भाई कसाय है, संजलन का कसाय है, इसमें क्या है? तो इसका तो मुनिराज को खेद होता है, इसके ऐसे ही परिणाम जो हमें पाप के परिणामों में हमें खेद नहीं लगता है, तीव्र कसाई में, और मुनिराज को इतना, क्योंकि वो दोनों के बीच देखते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन आता है उसके सामने ये 28 मुड़गुण के विकल्प भी क्या लगते हैं? आकुलता के दुख के कारण लगते है। तो ये तो उनकी यह दशा है। तो यहाँ फिर से हम क्या करते, कोई न कोई बाय से मुझे कुछ, कोई आके मेरे को धर्म कर देंगे, कोई बाहर से कोई आएगा। शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? ज्ञान होगा, अज्ञान होगा? ज्ञान होगा ना, देखो फिर से आया ना, शास्त्र में से ज्ञान आता है कि नहीं? सिंपल सी बात है, पूछना भी क्या है, इसमें पूछना क्या है? शास्त्र अभ्यास करने से पढ़ने से क्या होगा, ज्ञान होगा अज्ञान होगा? कुछ नहीं होगा। तो पढ़ना नहीं ना अभी, कल से बंद करेंगे ना। हाँ तो निमित्त है तो क्या, कुछ होता है ना, कुछ लाभ तो होता है ना। हाँ निमित्त है तो निमित्त कुछ लाभ तो करता है ना नित्य। निमित्त से नहीं होता है ना, तो अभी कल से शास्त्र अभ्यास बंद कर देने का। जीवन में कभी भी स्वच्छंदता करना मत, अपनी भूमिका का स्वीकार करना। जहां जहां अपने भूमिका है तो शास्त्र आदि का अभ्यास। ऐसे कोई नहीं, आचार्य देव ने चरणानुयाय दिया सभी में लिखा है कि शास्त्र अभ्यास तो तत्व विचार की, टोडल मंजी में लिखा है ना। तो तत्व अभ्यास तो हमारी भूमिका है, ऐसी भूमिका आचार्य देव आदि हो तो कोई शास्त्र के भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सभी उनको देखिये, उनके जो छह आवश्यक है ना, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं। और हमारे श्रावक के लिए तो आवश्यक है ना, छह आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि हमारी भूमिका है। मुनिराज का स्वरूप में इतने आगे बढ़ गए कि उसमें बाय कोई शास्त्र आदि हो तो हो, लेकिन वो कोई नियम रूप से, जे मोर पीस का मंडल जैसे, ऐसे कोई शास्त्र सदा साथ में हो और पढ़ना चाहिए, ऐसे कोई इतना ये दशा में पहुंच गए। तो यहाँ फिर से ये हमारी भ्रांति है। तो फिर यहाँ चलो और भी एक गुरुदेव से, सर्वज्ञ का कथन और उनका कहा हुआ भाव वे अलौकिक वस्तु है। फिर से क्या है, एक किसका कथन है, समय सार के रचना कौन की है, किसने की, निमित्त रूप से सर्वज्ञ भगवान ने। यहाँ तो कौन लिखा है, नाम क्या लिखा है, कुंतकन आचार्य देव ने, कुंतकन आचार्य देव ने सूत्र लिखे। बाकी सूत्रों का मूल भाव जो है वो कहाँ से आ रहा है, अनादि सर्वज्ञ से। ये कुंतकन आचार्य देव ने तो इसमें शब्द रूप दिया है, बाकी ये भाव तो अनादि का चला आ रहा है। तो इसे सर्वज्ञ का कथन है और उसमें कहा हुआ जो भाव है वो एक अलौकिक वस्तु है। पूरे इसमें दो चाहिए, क्या चाहिए शास्त्र अभ्यास के लिए, श्रद्धा में रुचि और उपयोग की स्थिरता। क्या चाहिए, रुचि और उपयोग की स्थिरता चाहिए। रुचि होगी तो स्वयं उपयोग स्थिर हो जाए, नहीं तो हम क्या होगा, उपयोग की स्थिरता नहीं है तो क्या होगा, शब्द ग्रहण होगा, शब्द ग्रहण होगा लेकिन भाव ग्रहण नहीं होगा। और तीरंज को शब्द की जगह भाव ग्रहण से सम्यक दर्शन हो जाता। ऐसा जरूरी है कि तीरंज को ये छह द्रव्य का नाम, सात तत्व का नाम, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं ना, इनसे तो ज्यादा जानते हैं। हाँ तो वो नहीं, हमारे जितना तो वो नहीं जानता है। हम बोले छह द्रव्य का नाम, उनका फिर भेद प्रभेद जो भी बोलो हम बोल पाएंगे। सात तत्वों का बोले तीरंज को बेचारे को अरे 11 अंक का पढ़ने वाले से ज्यादा तीरंज का ज्ञान है। ज्ञान का क्षोभ से नहीं, सम्यक मिथ्या से उसको पहचानना। उस ज्ञान को जिसमें आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, वो ज्ञान क्षोभ कितना भी हो वो क्या होगा, सम्यक नहीं है। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए कोई साधक कार्यकारी नहीं है। और जिसको शब्द नहीं आता है लेकिन भाव का ग्रहण है, वो सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग का एक अंश है। तो यह उनके अलौकिक वस्तु है। इसमें कोई भी एक बोल लो, गुरुदेव जा सरस वो शब्द सारा वापरे से माँ, कोई पण एक बोल लो अहियाँ अपने अहियाँ क्यों चाले से अनंत धर्मणी अने अनेकानमय मूर्ति, एमाती एक कोई पण लियो, एमा सर्वज्ञनी एटले पूर्णतानी झलक उठती है। एटले आखो शुं आवे छे, अल्प शब्दों माती पूर्णतानो भाव ख्याल आवे छे। एक कोई पण आवे ने दृष्टांत पण आवे ने, एक मोटू सरस होय झाड होय अथवा तो कोतरणी पाणीनो थांभलो होय, एनो एक साइड जोईने शुं थाय छे, आखानो शुं आवे छे ने, अनुमान विश्वास आवी जाय। એમાં અહીંયા કોઈ પણ એક ભાવને આપણે ગ્રહણ કરશું તો એમાંથી શું દેખાશે આપણને, પૂર્ણતાનું એ દેખાય। તો અહીંયા એક અલ્પમે છે ભી પૂર્ણતા કો હમે ખ્યાલ મેં આતા હૈ। ફિર આગે ગુરુદેવ લેતે द्रव्य और पर्याय के लिए अंतर्मुख तत्व और बहिर्मुख तत्व। अंतर्मुख तत्व कौन है? अंतर्मुख तत्व जो अंतर्दृष्टि से देखने में आए उसका नाम अंतर्मुख तत्व है। बहिर्मुक्त ऐसे नहीं, बहिर्मुक्ता में जो देखने में आते वो सब कैसे है? बहिर्मुख तत्व है। जैसे त्रिकाली द्रव्य वो कैसे अंतर में सामर्थ रूप शक्ति रूप है, उसको देखने के लिए उपयोग क्या करना पड़ेगा? आत्म सन्मुख करना पड़े। तो अंतर्मुक्ता में जो दिखने में आए अंतर्मुख का तत्व है, और ये पर्याय जो प्रकट होती है वो कैसे है? बहिर्मुख माने स्वभाव की अपेक्षा से बहिर्मुख है, बाकी परद्रव्य की अपेक्षा से तो अपना आत्मा में, लेकिन ये बहिर्मुख पर्याय बहिर्मुख क्यों? बहिर्मुख माने बाहर आई, प्रकट हुई, परिणमन हुआ। जो शक्ति सामर्थ रूप था वो अभी प्रकट हो पाया, तो उसका नाम क्या है? बहिर्मुख, एटले बाहर प्रकट हुई। ऐसे देखो यहाँ कैसी व्याख्या करते अंतर्मुख बहिर्मुखता में। एक और भी गुरुदेव से कहते उत्पाद वय किसे कहते? उत्पाद वय किसे कहते? अथवा संयोग वियोग कैसे कहते? पर्याय का प्रकट होना उत्पाद वो एक संयोग है, और पर्याय का व्यय होना वो एक क्या है? वियोग है। बाह्य के संयोग तो बहुत से दूर रहा, योग बनना जिसका प्रकट होना वो संयोग है। तो पर्याय एक समय के लिए आती है, दूसरे समय में व्यय होती है, नाश होती है, तो वो वियोग है। तो इसी प्रकार है यहाँ बहिर्मुख अंतर्मुख की व्याख्या की। फिर से इसके नीचे में आखिर के लाइन के ऊपर की अनंत धर्मों को स्याद पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साबित करते कौन है? फिर से ये जो जिनवाणी है अनेकानमय मूर्ति है वो अभी देखे उसकी व्याख्या करते, वो क्या करते? जिनवाणी क्या करते? स्यादवादमय अनंत धर्मण जो तत्व को दिखाती है ऐसे अनेकानमय मूर्ति। पहले क्या शब्द दिया? अनंत धर्मों को। वाणी किसको कहती है? आत्मा के अनंत धर्मों, एक बात आई अनंत धर्मों को। फिर कैसे 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 बताते हैं? स्याद पद से, स्याद पद से माने
कोई अपेक्षा से,
कथनचित कोई अपेक्षा से, और भी कुछ
एक और, उसका एक मतलब पड़खा
एक माने एक पड़खे माने कंस से एक अपेक्षा से मुख्य गुण करके स्याद क्या ना अपेक्षा, अपेक्षा माने जिसकी बात कहना है उसको क्या कहा? मुख्य किया। और दूसरा गौण माने वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एकांतवादी है दूसरे धर्म को अभाव मानता है, और जैन दर्शन क्या है? प्रयोजन के वश क्या किया जाता है? मुख्य गुण। और वो मुख्य गुण शैली को ही स्यात पद अपेक्षा से कहना। तो यहाँ पहले जो जिनवाणी है वो पदार्थ को वर्णन करते है, अनेकानमय मूर्ति को, ये अनंत धर्ममय पदार्थ को बताते कैसे? वस्तु के अनंत धर्म उसको भी स्याद पद से, और भी एक धर्मी में। एक धर्मी माने एक ही पदार्थ में, ऐसा नहीं कि एक पदार्थ में नित्य लिया दूसरे पदार्थ में अनित्य लिया, ऐसे भी नहीं। एक ही पदार्थ अनंत धर्मों को अपेक्षा से मुख्य गुण करके एक ही धर्म में, और भी कैसा शब्द आ गया? अविरोध रूप से साबित करते बताते। फिर अविरोध माने क्या? हाँ विरोध न माने क्या? तो विरोध तो है, नित्य अनित्य दोनों है, विरोध तो है। हाँ पता, आत्मा नित्य है या अनित्य है? हाँ तो विरोध किया आपने तो पक्का नहीं किया। पहले समय में नित्य होगा, दूसरे समय अनित्य, आपने तो विरोध किया। फिर बोलते हैं हम अविरोध से करते अविरोध रूप से माने जो अपेक्षा घटित हो। आपको नित्य अनित्य चाहिए ना, पर्याय नित्य हो द्रव्य अनित्य हो गया आपका, तो ये विरोध है। वस्तु का स्वरूप जैसा है अविरोध रूप से कि द्रव्य नित्य है और पर्याय, ये अविरोध रूप से एक ही पदार्थ में ये अपेक्षा लेके, जहाँ द्रव्य की बात करना है तो आत्मा नित्य है, पर्याय की बात करना है तो अनित्य, और एक ही अनंत धर्म, इस प्रकार अनंत धर्मों से ये पदार्थ को देखो। ये सब कंडीशन है, ऐसा ही मान लेना बस आत्मा को अनेकांतमय, अनेकांतमय बस सभी धर्म है, सभी माने रूपी भी है और अरूपी भी है, जड़ भी है और चेतन भी, ऐसे नहीं। ये विरोध है, विपरीत है, और ये अपेक्षा इसमें धर्म होना चाहिए ऐसी कोई अपेक्षा हो तभी ये कथन करते, ऐसा ही नहीं कोई कुछ भी कहे। चलो तो इससे आगे एक धर्म की व्याख्या करते गुरुदेव 92 पेज नेक्स्ट पेज इसमें है नीचे श्रोता और पूज्य गुरुदेव से, उसमें आखिर में तीसरी लाइन उसमें धर्म किसे कहते हैं, जो धारण करे जिसको टिकाए रखे ऐसे स्वभाव को यहाँ धर्म कहते हैं। धरती इति धर्म प्रवचन सार में जय सनाचार देव ने लिखा है, जो धारण करके बैठा है। यदि उसमें धर्म ही नहीं है तो कोई अपेक्षा घटित होगी नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई संतान ही नहीं है तो उसको पिता किस अपेक्षा है, जिसको कोई भतीजा ही नहीं है तो उसको चाचा। तो पहले क्या अपेक्षा लगाने के पहले क्या पक्का करना है, ऐसा धर्म होना चाहिए, ऐसा संबंध होना चाहिए। फिर दूसरा उनको कुछ कौन सी अपेक्षा से उसको भांजा हो और उसको हम कह गए चलो कैसे हो कि चाचा तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसे ही जो जिस अपेक्षा से पहले तो धर्म होना चाहिए और जिस अपेक्षा से है वो हम पता लेना। तो ऐसे ही यहाँ तो कैसे धारण किया धरती इति धर्म जो टिकाए रखता है। और इस प्रकार से एक देखे तो पदार्थ ने क्या क्या धारण करके रखा, अजी अजी आ गए जयचंद जी ने आगे आएगा अनंत गुण सामान्य और विशेष उनकी समय समय वर्ती पर्याय और परस्पर सापेक्ष विरोधी धर्म, ये तीनों, और ये तीनों को धर्म कहने मानते। वो अलग बात है सम्यक दर्शन धर्म चारित्र धर्म ये सब अलग या जैन धर्म वो अलग बात है। यहाँ तो पदार्थ जो धारण करके बैठा है तो किसको धारण कर, तीन प्रकार, एक गुण को, गुण की समय समय वर्ती पर्याय को और उसमें सापेक्ष धर्म को, एक ही समय बैठा है तो इस तीनों को एक नाम क्या किया जाता है, धर्म किया जाता है। तो जो अपने धारण करके बैठा है टिकाए रखा है इस स्वभाव को योग्यता या धर्म कहने में आता है। आगे फिर 93 में देखो इसमें आप देखना है तो 92 में लास्ट में क्या लिखा है, चलो अनंत आत्मा अनंत परमाणु कालाणु आया ना पीछे भी तीन है धर्मा, ये सब क्या है गुरुदेव जान जैसे ये प्रवचन में क्या है पाठशाला चलाते है इसे छह द्रव्य का नाम किस में होता है। फिर देखो उसके बाद में एक भाई को गुरुदेव से पूछते है छह द्रव्य का नाम आता है कि नहीं, तो उसने क्या क्या शुरू किया छह द्रव्य के नाम में क्या ले, जीव अजीव धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल, पुद्गल अजीव है कि नहीं। तो फिर हमने क्या गलत बोला, नहीं 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 पुद्गल अजीव है कि नहीं, तो हमने क्या गलत बोला इसमें क्या है,
जीव
नहीं नहीं मैं सही पुद्गल तो अजीव है ना, तो पुद्गल की जगह हम अजीव बोल सकते हैं ना। अरे भाई ये जाति नहीं पूछी है द्रव्य के नाम पूछे है, अजीव क्या है
जाति
का नाम है, कोई एक पदार्थ का नाम नहीं है, पदार्थ का नाम तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है। तो ये जाति नहीं पूछी है छह द्रव्य के नाम पूछे है, तो ये हाँ जाति पूछना है तो सात तत्व बोलना, ये जीव अजीव आश्रव बंध सम निजम वो अलग बात है। तो यहाँ भी ऐसे गुरुदेसी ये सब कहते नाम एक यार विषय आए तार गुरुदेव से हम साव बाड़क नी जेव पाठशाला जेव पण एमां बधा पूछी ने पछी एक एक ना नाम बोले छे गुरुदेव के रीते अजीव न कहेवाय छ द्रव्यमां अजीव नहीं कहे ना तत्वमां अजीव बधा आवे एम कहीने एना पछी सरस छे एना पछी नो परे लियो कहे छे ने सेठ दरकार क्यां करे छे देखा आ बहु एमना माटे नथी है एक इसके लिए है हमारे लिए सही माने में हम आत्मा के लिए भी 24 घंटे में से कितना टाइम निकालते नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या करें हमें और भी काम है ना सभी बहुत कार्य है सिर्फ है। अरे आत्मा के लिए 24 ने सर्वस्व अर्पण करने योग्य है तभी वो प्राप्त होने वाला महान तत्व है, उसका थोड़ी बात है वो आगे लेंगे।